नमस्कार भारत, तारीख 21 नवंबर, दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। माली की राजधानी बमाको में बंधक संकट खत्म, सभी को बाहर निकाला गया, भारतीय भी सुरक्षित।
ठंडा सब कुछ, बाकी अपने सारे इंडियन है जो सेफ है। मैं देगा मेरे तो दाल चावल देगा एवियन पे, जो कोई किसी सेफ जगह है, यहाँ पे स्टेडियम है एक बास्केटबॉल का, वहाँ पे।
राजनाथ सिंह का चीन दौरा, मिल रहे हैं कई मंत्रियों वरिष्ठ नौकरशाहों से।
हर मीटिंग में सारे वाइस मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े मौजूद थे और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने भारत के साथ सिक्योरिटी के मसले का जो जांचा, देखा, आगे बढ़ाने की कोशिश।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। अफ्रीकी देश माली में बंधक संकट खत्म हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी बमाको के होटल में अब कोई बंधक नहीं है। शुक्रवार सुबह होटल रेडिसन ब्लू में इस्लामिस्ट बंदूकधारियों ने हमला कर 170 लोगों को बंधक बना लिया था। होटल में 20 भारतीय भी थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। माली के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। उत्तर अफ्रीका स्थित अलकायदा से जुड़े एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर इस्लामिक स्टेट से लड़ने से में सभी देशों के साथ आने की अपील की है। इस प्रस्ताव को सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई का नाम दिया गया है। प्रस्ताव का मसौदा फ्रांस ने पेरिस हमले के बाद तैयार किया था। मसौदे में इस्लामिक स्टेट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई के नए चरण की बात की है। देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस स्तर के हमले वहां हो रहे हैं वो काफी नहीं है।
Но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы...
मैं कहना चाहूंगा कि सीरिया में विद्रोहियों और चरमपंथियों के सफाए और रूसी लोगों को संभावित चरमपंथी हमले से बचाने के लिए मौजूदा कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमें बहुत काम करना है और मुझे उम्मीद है कि अगले चरण में हम इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे और उम्मीद के मुताबिक उसके परिणाम भी आएंगे। व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पेरिस में जिस जगह पर एक हफ्ते पहले इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने हमला किया था, आज लोग वहां मृत लोगों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। पेरिस के लोग बटाक्लान कंसर्ट हॉल के बाहर इकट्ठा हुए, जहाँ ग्रेनेड और बंदूकों से हमले हुए थे। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने पर शुक्रवार को बिना शर्त रोक लगा दी है। सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी का हवाला देते हुए ग्रीन पीस इंडिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ संस्था ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अफ्रीकी देश माली के बंधक संकट से। माली की राजधानी बमाको के जिस होटल में कल लोगों को बंधक बनाया गया था, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 20 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह कुछ बंदूकधारियों ने हमला करके 170 लोगों को बंधक बना लिया था। अलकायदा से जुड़े एक संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
माली के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी बमाको के होटल में सभी को बाहर निकाल लिया गया है और अब कोई बंधक नहीं है। शुक्रवार सुबह होटल रेडिसन ब्लू में इस्लामिस्ट बंदूकधारियों ने हमला कर 170 लोगों को बंधक बना लिया था।
Everyone's moving now. Everyone's moving. I was in front. Everybody's asked to leave now. Looks like there have been gunshots.
माली के गृह मंत्री मेजर कर्नल सालिफ त्रावोर ने पत्रकारों को बताया कि हालांकि सभी बंधक मुक्त करा लिए गए हैं, लेकिन रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं कि चरमपंथियों को एक ही मंजिल से पकड़ा गया। यहाँ अब उनके पास कोई बंधक नहीं है। कई लोग बंदूकधारियों की गोली के शिकार हुए हैं, लेकिन पहले होटल की तलाशी ले ली जाए, उसके बाद मरने वालों की सही संख्या का पता चल सकेगा। ये थे माली के गृह मंत्री के शब्द। حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 27 لوگوں کی موت اس حادثے میں ہو چکی ہے۔ امریکی سوامتو والا یہ ہوٹل ودیشی ویوسائیوں اور ایئر لائن کرمچاریوں میں کافی لوکپریہ ہے۔ بندکوں میں 20 بھارتی بھی تھے، لیکن وہ ایک الگ عمارت میں ہونے کے کارن سرکشت تھے، اور اب وہ ہوٹل سے باہر ایک سرکشت استھان پر ہیں۔ سماچار ایجنسی رائٹرز نے سرکشا بلوں کے ایک سوتر کے حوالے سے کہا کہ حملہ کرتے سمے بندوق دھاری اللہ اکبر چلا رہے تھے۔ بندھک بنائے گئے ایک ویکتی کا رہا ہونے کے بعد کہنا تھا، میں نے صبح گولیاں چلنے کی آوازیں سنی، مجھے لگا جیسے پٹاخے بج رہے ہیں، اور میں استھتی کو ٹھیک سے بھانپ نہیں پایا۔ میں ہوٹل کے ریستوراں میں گیا اور وہاں میں نے دھواں دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ بعد میں مالی کے سینکوں نے ہمیں باہر نکالا اور ہوٹل خالی کرایا۔ یہ تھے ایک پرتیکش درشی کے شبد۔ پہلے خبریں آئی تھیں کہ فرانسیسی اور امریکی سینکوں کی مدد سے بندکوں کو بندوق دھاریوں کے قبضے سے چھڑانے میں مدد ملی، لیکن بعد میں امریکی ودیش منترالے نے اس کا کھنڈن کیا۔ ودیش منترالے کے پروکتا جان کربی کا کہنا تھا کہ اس ابھیان میں کوئی امریکی سرکشا کرمی شامل نہیں تھا۔
There was no active involvement that I'm aware of by US military or US government personnel.
اس ابھیان میں جہاں تک میری جانکاری ہے کوئی امریکی سینک یا امریکی سرکار کا کوئی ویکتی شامل نہیں تھا۔ مالی کی سینا نے اپنی کشلتا اور بہادری کا پردرشن کیا ہے۔ حالانکہ بماکو میں کچھ امریکی سینک ہیں ضرور، لیکن اس ابھیان میں ان کی کوئی بھومکا نہیں تھی۔ امریکی ودیش منترالے کے پروکتا جان کربی کے شبد۔ اسی سال اگست مہینے میں مالی کے سیوارے شہر میں سندگدھ اسلامی چرم پنتھیوں نے 13 لوگوں کی ہتیا کر دی تھی، جن میں 5 سنیکت راشٹر کرمی بھی شامل تھے۔
تو بماکو کا بندھک سنکٹ فی الحال ختم ہو گیا ہے۔ جس ریڈسن بلو ہوٹل پر چرم پنتھیوں نے حملہ کیا اور وہاں لوگوں کو بندھک بنایا، اس ہوٹل کے پاس ایک بھارتی ناگرک نوین کمار اپنا ریستوراں چلاتے ہیں۔ بی بی سی سمواددتا ونیت کھرے نے کل ان سے بات کی اور پوچھا کہ آپ سرکشت تو ہیں نا؟
یہ تو شاید ٹھنڈا سب کچھ، باقی اپنے سارے انڈین ہیں جو سیف ہیں۔
یہ آپ کو کیسے پتا چلا سیف ہیں؟ آپ کی بات ہو پائی ہے؟
میں دے ہوں، میں دال چاول دے گا ایون پہ۔
اچھا، آپ ان کو دال چاول دے کر آئے ہیں؟
ہاں جی۔
تو کیسے، مطلب آپ کیا ہوٹل کے اندر جا سکتے ہیں کیا؟
نہیں نہیں، ہوٹل بند ہے جی، وہ کوئی کسی سیف جگہ ہے، یہاں پہ اسٹیڈیم ہے ایک باسکٹ بال کا، وہاں پہ ہے وہ۔
اچھا، یہ اب ہوٹل میں نہیں ہے، ریڈیسن ہوٹل میں نہیں ہے وہ؟
نہیں نہیں نہیں، ہوٹل میں نہیں ہے، وہ باہر نکل گئے ہیں سبھی۔
اچھا
سیف ہیں؟
اچھا،
یہ ان سے پوچھ چاچ ہو رہی ہے آپ کی؟ ہاں، زیادہ کسی کو ملنے دے رہے ان سے
جی۔ آپ کا جو انپورنا ہوٹل ہے، یہ ریڈیسن سے کتنی دور ہے؟
یہ 100 میٹر کی دوری پر ہے سر ہمارا ہوٹل انپورنا۔
اچھا، تو کچھ آپ نے دیکھا؟
نہیں، ہم نے دیکھا تو سر صبح صبح یہاں پہ اسٹارٹ ہی مارکیٹ 10 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے۔
تو جب آپ آئے تو آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ گولی باری ہو رہی ہے، یہ حملہ ہوا ہے؟
بس یہ کافی ملٹری کی یہاں کاریں گئی یہاں سے ریڈیشن کی طرف، تو وہاں سے پتا لگا کہ ہاں کچھ بات ہوئی ہے، پھر فائرنگ کی آواز آئی تھوڑی
جی،
پھر لوگوں نے اپنے دکانیں بند کر دی، تو انہوں نے پھر الرٹ کر دیا یہاں پہ
جی۔ ابھی آپ انپورنا ہوٹل کے اندر ہیں، کیا دکھ رہا ہے چاروں طرف؟
ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی تو سیل ہے سر، آگے جانے نہیں دے رہے ہیں، ابھی تو ہوٹل ابھی بند ہے، ابھی ہم گھر بھی ہمارا پاس میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔
تو جب آپ لوگوں سے ملے جو بھارتی تھے، انہوں نے کچھ بتایا کہ کیا ہوا، کیسی حالت ہے ان کی؟
نہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی دقت نہیں ہے، چوٹ چاٹ نہیں ہے۔ باقی جو ان کا جو اپارٹمنٹ تھے نا، وہ الگ تھے ہوٹل سے، تھوڑا ہوٹل تو سیم ہی تھا ہٹ کے، باقی وہ اپارٹمنٹ ہے نا، وہ جو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے سارا ٹوٹل، تو اس میں صرف وہ انڈین ہی رہتے، تو ہاں، تو نیچے سے انہوں نے بند کر دیا، تو ریبل والے اوپر تو نہیں پہنچ پائے ان کے پاس، باقی یہ ہے کہ سیف تھے وہ بالکل۔ باقی جو بلڈنگ اس میں جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، الگ 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 وارڈ میں تھے وہ۔
تو آپ کی کیا بات ہوئی کنہیں سے، اور کھانے کے لیے آپ نے کیا کیا دیا انہیں پھر؟
کھانے کے لیے بس ابھی کچھ تو دے گیا ہے، باقی کچھ اور دے گئے، بسکٹ واسکٹ دے گئے فی الحال۔ تو
یہ تھے مالی کی راجدھانی بماکو میں انپورنا ہوٹل چلانے والے بھارتی کاروباری نوین کمار۔ بھارت کے گرہ منتری راجناتھ سنگھ چین کی یاترا پر ہیں۔ پچھلے ایک دشک کے دوران یہ کسی بھارتی گرہ منتری کا پہلا چین دورہ ہے۔ اسے دونوں دیشوں کے رشتوں میں سدھار کے لحاظ سے مہتوپورن مانا جا رہا ہے۔ اپنی اس یاترا کے دوران راجناتھ سنگھ نے چین کے پردھان منتری، گرہ منتری اور انیہ ورشٹھ نیتاؤں سے ملاقات کی ہے۔ پیرس حملوں کے بعد ان ملاقاتوں کے کیندر میں سرکشا اور چرم پنتھ مکھ مدے بن گئے ہیں۔ ہمارے سہیوگی روہت جوشی نے چین کی راجدھانی بیجنگ میں موجود ورشٹھ پترکار سائبل داس گپتا سے سمپرک سادھا اور جاننا چاہا کہ چینی نیتاؤں سے ہوئی بھارتی گرہ منتری کی اس ملاقات سے کیا کچھ نکل کر آیا۔
بات چیت تو بہت ہوئی، یہاں کے ہوم منسٹر سے بات ہوئی، یہاں کے پریمیئر مطلب کہ پرائم منسٹر سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا بڑے گرم جوشی سے लोग सामने आए और हर मीटिंग में सारे वाइस मिनिस्टर सारे बड़े बड़े अफसर मौजूद थे और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने भारत के साथ सिक्योरिटी के मसले का जो संबंध है उसको उन्होंने जांचा देखा आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत ही नाजुक सवाल ये इसलिए है कि बीच में पाकिस्तान है, सिक्योरिटी का कोई भी मसला आता है तो पाकिस्तान का इशू है, उस पर आप बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, कहीं उस बीच में है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से सड़क बनने जा रही है, चीनी लोग बना रहे हैं और कई ऐसे संबंध है, मुंबई की घटना है, तो यहाँ चीन में सिंजियांग में जो आतंकवादी है, आतंकवादी जो माना जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आया है, तो दोनों जगहों के दोनों देशों के आतंकवादी अगर एक जगह से आता है तो उसके कैसे डील किया जाए। खास करके चीन और पाकिस्तान का बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध टूटने वाला नहीं है चाहे भारत कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का मसला है, उसका पड़ोसी है उस तरफ, उसके आगे अफगानिस्तान है, तो चीन को तो पाकिस्तान से संबंध बनाए रखना ही है। तो इस बीच में क्या रास्ता निकाला जाए ये सोचने के इस पहलू पर अब यदि सोच रहे हैं कि एक प्रकार का मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए कि जहां डे टू डे सिक्योरिटी के मसले पे बातचीत होती रहेगी और एक दूसरे को फीडबैक मिलता रहेगा।
तो राजनाथ सिंह की वहां के नेताओं से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या उभर कर आ रहा है स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो?
क्या उभर के आया अगर आप साफ शब्दों में सुनना चाहे तो हाँ, जहां तक सिक्योरिटी का मसला है, टेररिज्म का मसला है, भारत और चीन में एक दूसरे पर विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है, यही उभर के आया है। क्योंकि अविश्वास का जो माहौल है जिसमें ये संबंध है उसमें फर्क लाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है।
ये तिब्बत का जो मसला है क्या उसका भी कोई असर है इन दोनों देशों की बातचीत में?
नहीं, जहां तक सिक्योरिटी का मसला है वहां तो तिब्बत के मसले का ज्यादा जिक्र होने की संभावना कम ही है। वो तो देशों का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो तनाव है उसमें रहा है तिब्बत, लेकिन अब तो टेररिज्म पर पूरा ध्यान जा रहा है, अब तो पूरा पेरिस की घटना पे जा रहा है, चीन का एक आदमी पहली बार आईएस के हाथ में खून हुआ परसों, उस पर ध्यान जा रहा है, ध्यान इस बात पे जा रहा है कि मुंबई पे अटैक हुआ था वो उसी देश से वो लोग आए हैं जहां चीन के में भी टेररिस्ट आ रहे हैं, तो अब तो पूरा टेररिज्म पर फोकस हो रहा है। और बॉर्डर डिस्प्यूट का मसला तो भारत और चीन के बीच में कई मैकेनिज्म से हो रहा है, इस वक्त बॉर्डर डिस्प्यूट को हल्का सा देखा गया लेकिन ज्यादातर फोकस सिक्योरिटी पर रहा।
तो दोनों देशों के जो सुरक्षा हालात हैं उन पर और क्या खास बातें रही हैं गृह मंत्री की इस यात्रा में?
होम मिनिस्टर तो अपने ही विषय पे देखे हैं लेकिन एक चीज उनको बहुत प्रभावित कर दिया, वो यहाँ की जो सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी है वहाँ गए और भी कुछ फैक्ट्रीज में गए, उनको पता चला कि सिक्योरिटी के मसले को लेकर जो प्रोडक्ट जो चीज साधन इस्तेमाल होते हैं, कैमरा है, बंदूकें हैं, वायरलेस सेट्स हैं, कम्युनिकेशन लिंकेजेस हैं, सैटेलाइट का उपयोग है, हाई स्पीड गाड़ियां हैं, बोट्स हैं, तो ये सारी चीजों पर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हमको ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि मॉनिटरिंग के लिए जहां तक सिक्योरिटी और पुलिस की व्यवस्था है, तो पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मशीनों की जरूरत है, जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसमें सुधार लाने के लिए राजनाथ सिंह ने ये कहा कि हम एक टीम भेजने वाले हैं चीन में।
भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा, जानकारी दे रहे थे बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सुर्खियों में आ गया, प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से मुख्यमंत्री को कोट करते हुए कहा गया कि अगर कोई गौ हत्या करता है चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो वो देश का दुश्मन है। लेकिन हरीश रावत ने बीबीसी से बात करते हुए इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने जब मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके इस बयान के बारे में पूछा तो वो बोले,
किसी ने बहुत मिस्चीवियस तरीके से मेरी समझ से प्लान किया है, इवन उस सम्मेलन में तक जो है नोबडी हैज सेड दैट द काउ स्लॉटर इज अ डे स्लो है या इनको ہندوستان میں رہنے کی وہ نہیں ہے کر کے میرے تو کہنے کا کوئی دور دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
لیکن راوت جی یہ پی ٹی آئی کی اور سے آیا ہے جو بہت ذمہ دار نیوز ایجنسی ہے اور سب نے اسی کے حوالے سے چھاپا ہے.
ہاں میں نے پی ٹی آئی کو بھی کہہ دیا ہے, ان سے بھی میری بات ہو گئی ہے. میں نے کہا تم جو ہے یا تو ایکشن کرو اپنے آدمی کے خلاف, یہ تو نہیں کرنے جا رہے ہو تو پھر میں نے کہا تو سیریس ہو, لیکن آپ ہمارا جنائل تو دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک کام کر دیجیے, برائے مہربانی میں آپ کو جن کی ادھیکشتا میں بات ہوئی ہے شنکراچاری, آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے کہ ہریش راوت نے ایسا کوئی بیان دیا ہے.
اس کی ضرورت شاید نہیں ہے, لیکن راوت جی جس طریقے سے گائے کو لے کر کے راجنیتی ہو رہی ہے, کیا آپ کیا وجہ جانتے ہیں کہ آپ کو لے کر کے اس طریقے کا بیان آیا اور آنے کے آدھے ایک گھنٹے بعد ہی سب جگہ سرخیوں میں بن گیا, طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ آنے لگے؟
مجھے لگتا ہے کہ آل ویل پلانڈ کنسپریسی سب بنا کر کے جو ہے یہ طریقے سے کیا گیا اور سلیکٹڈ ان کو دیا گیا ہے.
اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال اس طریقے سے کروں کہ اگر یہی آپ سے سیدھے سیدھے پوچھا جائے کہ جو لوگ گو ہتیا کرتے ہیں ان کے پرتی آپ کا رویہ ہوگا تو کیا ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیں, ہمارے راجیہ میں اپنا قانون, جب تک وہ قانون ہے ہم اس قانون سے بدھے ہوئے ہیں, لیکن وہ قانون جو ہے گو ہتیا پہ تو جو ہے پرتیبندھ ضرور کہتا ہے, لیکن جو ہے اس کو کوئی دیسروہ یا جو ہے یہ کہتا ہو کہ نہیں ان کو یہاں اتراکھنڈ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یا دیش میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ اس قانون کا نام ہی گو ہتیا پرتیبندھ نہیں ہے, اس کا نام ہے گو سنرکشن قانون. دیٹ ٹو واز انیکٹڈ بائی بی جے پی گورنمنٹ اینڈ ہم نے اس کو ریپیل نہیں کیا.
یہ تھے اتراکھنڈ کے مکھیہ منتری ہریش راوت اور ان سے بات کر رہے تھے ہمارے سہیوگی دل نواز پاشا.
بی بی سی انڈیا بول.
بہار چناؤ میں سفلتا کے بعد اب 2017 میں اتر پردیش میں ہونے والے چناؤ میں بھی مہا گٹھ بندھن کو لے کر سگبگاہٹ شروع ہو گئی ہے. ان قیاسوں کو اس وقت اور بل ملا جب اتر پردیش کے مکھیہ منتری اکھلیش یادو نے کہا کہ ودھان سبھا چناؤ میں مہا گٹھ بندھن کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کیا اتر پردیش میں کوئی مہا گٹھ بندھن یا بہار کی طرز پر سفلتا کو دوہرا سکتا ہے؟ یہی ہے شنیوار 21 نومبر کو ہونے والے بی بی سی انڈیا بول کا وشے. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001.
बीबीसी इंडिया बोल.
तो शाम को हमें आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए. और अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं. समीर आत्मज मिश्र मौजूद हैं, पढ़ भी चुके हैं आप.
मोहनलाल जी, आज अखबारों में एक तो माली का, जो अफ्रीकी देश माली है वहाँ का बंधक संकट कल जो था वो छाया हुआ है. लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से उस खबर को जगह दी है. दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, कल नीतीश कुमार ने शपथ लिया अपने मंत्रियों के साथ. वो खबर अखबारों में काफ़ी दिलचस्प हेडिंग्स के साथ है, जैसे अगर मैं,
और तस्वीरों में लालू के बेटे भी,
तस्वीरों में लालू के बेटे, और लालू के जो एक बेटे, उन्होंने शपथ लेने में कुछ गलती की तो राज्यपाल ने उनसे दोबारा शपथ लेने को कहा,
अटक अटक
उसकी चर्चा भी काफ़ी अखबारों में है. और जैसा मैं कह रहा था कि हेडिंग्स की, तो अमर उजाला लिखता है नीतीश को ताज, लालू को राज. और इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी दिलचस्प हेडिंग दी है, नीतीश टेक्स चार्ज, लालू जूनियर वन हिज डिप्टी, जूनियर टू हिज कलीग. यानी एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरे उनके कैबिनेट के सहयोगी बने हैं. इसके अलावा जो पीटर मुखर्जी पर शीना बोरा की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, ये खबर भी अखबारों ने काफ़ी प्रमुखता से इसको जगह दी है. ग्रीन पीस इंडिया को हाईकोर्ट से राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पर्यावरण जागरूकता संगठन ग्रीन पीस इंडिया सोसाइटी का पंजीकरण रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. तो ये पहले सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. द हिंदू की एक खबर है जिसमें स्मृति ईरानी से दिल्ली की एक अदालत ने उनके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनसे,
मतलब ये मामला अभी भी दबा नहीं है, फिर से उभर के आ गया. बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र. और अब बात फिल्म जो कल रिलीज हुई उसकी समीक्षा.
मैं फिल्में करूं, 20 फिल्में बना चुका हूं, लोगों ने एक दो फिल्म तो देखी होगी, देखी नहीं होगी तो नाम तो सुना होगा.
वैसे तो कोई भी फिल्म एक ही डायरेक्टर बनाता है और वो ही काफी होता है, लेकिन जब एक फिल्म को 11 डायरेक्टर्स बना दें तब क्या होता है, उसे कहते हैं एक्स पास्ट इज प्रेजेंट, और यही नाम है इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म का। वैसे तो इसमें बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स की कहानी है और एक के फैक्टर है, ये सब चीजें क्या है, मल्टीपल स्टोरीज के साथ कैमरा किसके ऊपर फोकस रहता है, ये सारी बातें हमें बताएंगे फिल्म क्रिटिक अर्नब।
देखिए ऐसा होता है कि आपने ठीक कहा कि एक ही कई बार फिल्म, एक ही डायरेक्टर की फिल्म भारी पड़ जाती है। यहाँ पे 11 डायरेक्टर्स ने मिलकर एक कहानी को आगे बढ़ाया है। ऐसी हमने कई फिल्में देखी है यहाँ पे 11 कहानियां, 11 या 10 कहानियां 10 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं। यहाँ पे एक ही कहानी को आगे बढ़ाया गया है। प्रेमाइस बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कई कहानियां जो होती है वो स्टोरी बोर्ड लेवल पे बहुत अच्छी लगती है। फिल्म का एक सीन है लास्ट में जहाँ पे रजत कपूर एक नई लड़की से कहते हैं वो लड़की कौन थी, कीप गेसिंग, तो मुझे वो डायलॉग याद रहता है कि कीप गेसिंग में ये है कि गेस करते रहे कि हुआ क्या। फिल्मकार तो थे, उनके साथ 10 लड़कियां भी जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ उनका आखिर में ये पता नहीं लगता है। बहुत ही कंफ्यूज तरीके से स्क्रिप्ट को बनाया गया है, फिल्म को बनाया गया है, इसलिए मैं इसको 5 में से 1 दूंगा।
तो चलिए बात करते हैं अब एक ऐसी फिल्म की जो डब्ड है हिंदी में।
जी, स्पेक्टर।
या
देखिए बॉन्ड का इंतजार पूरे विश्व में रहता है और हमें भी था। ये डैनियल क्रेग की लास्ट फिल्म है, यानी इसके बाद कोई नए बॉन्ड आएंगे। फिल्म में सेंसर बोर्ड ने काफी सारे सीन्स काटे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी कि उनका कैरिज्मा होता है, एक वो नॉटीनेस होती है, उनकी बातें होती हैं, वो जिस तरह से अपने हीरोइंस के साथ बातें करते हैं उसमें काफी रोमांच होता है। यहाँ पे जो किस थे कई सारे वो सेंसर बोर्ड ने काट दिए हैं या उनको 2 या 5 सेकंड तक ही रखा है, जिसकी वजह से काफी सारा मजा जो है फिल्म का किरकिरा हो जाता है। यानी सिर्फ फिल्म को मैं एक इरोटिक तरीके से पेश करें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार बहुत इंटीमेट सीन्स में कुछ डायलॉग्स होते हैं और बॉन्ड की मूवी में तो मिस्ट्री होती है, इट्स अ थ्रिलर, उसमें सस्पेंस होता है, तो कई बार वो सस्पेंस ही खो जाएगा अगर आप वो सीन काट देंगे। इसलिए बॉन्ड जो है सब मिला के वो बॉन्ड नहीं है जो हम आज तक देखते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि जो बॉन्ड के फैंस हैं, बॉन्ड के मूवीज में हमेशा एक नयापन होता है, इसलिए शायद उनके जो पुराने फैंस हैं उनको अच्छी लगेगी।
तो कुल मिला के ये जो वीकेंड है 50-50 माना जा सकता है।
बिल्कुल।
कल रिलीज हुई फिल्मों की समीक्षा पेश कर रही थी इंदु पांडे और अर्नब बनर्जी। अब उन खबरों की बात जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
जयपुर में आज से कलाकारों का महाकुंभ जयपुर आर्ट सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन में दुनिया के 12 देशों के कलाकार शामिल होंगे। जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय इस सम्मेलन में कलाकारों की कला का जीवंत प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात मलेशिया और सिंगापुर के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उनका जोर व्यापारिक संबंध मजबूत करने और भारत में निवेश लाने पर होगा। सिंगापुर में मोदी राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर द्विपक्षीय संबंध पर प्रधानमंत्री ली सीन लुंग से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज रतलाम, झाबुआ और तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं।
और अब कार्यक्रम में हफ्ते भर खेल की हलचल।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच बुधवार से नागपुर में खेला जाएगा। इससे पहले बेंगलोर में खेला गया पहला टेस्ट मैच लगातार 4 दिन बारिश में धुल जाने के बाद ड्रॉ समाप्त हुआ। बेंगलोर में केवल पहले दिन का ही खेल हो सका, जहां भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी की दावत दी और उसके बाद उसे 214 रन पर समेट भी दिया। जवाब में पहले दिन भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बनाए। रन बनाने के लिए जूझ रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने नाबाद 45 रन बनाकर राहत की सांस ली, तो मैच के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर एक दिन और भी होता तो क्या हो जाता।
4 दिन गेम ना होना और उसके बाद सिर्फ 1 रिजर्व डे होना, उसमें मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आता है, क्योंकि जो हमने बांग्लादेश में भी देखा हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई रूल होना चाहिए। तो जितने डेज टेस्ट मैच में से नहीं खेले जाते हैं उतने एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो अगर आपको चार नहीं मिले तो आप नौ दिन का टेस्ट मैच नहीं कर सकते हैं रियलिस्टिकली। तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले से ही ऐसा फॉर्मेट चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। जो यहाँ पे हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, जो हमारे कंट्रोल में था वो हमने डे वन में बहुत अच्छा किया।
अब नागपुर में तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका कैसी तैयारी करें, इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
नागपुर में अगर बाउंस हुआ विकेट में, अगर थोड़ा तेज हुआ विकेट, तो डेफिनेटली 50-50 मैच, फिर मजा भी आएगा। लेकिन तैयारी करने के लिए साउथ अफ्रीका के पास कोई टाइम नहीं है। अब वो यहाँ पे आके तो स्पिन खेलना नहीं सीख सकते हैं, उनके पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो भारत को परेशान करे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय बैट्समैन बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, उनमें भी बहुत खामियां हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास स्पिन खेलने का कोई टेक्निक ही नहीं है बिल्कुल। खास करके जैसे आपको याद होगा मोहाली में आमला ने किया, अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं हुआ तो मुझे फिर लगता है कि अच्छा मैच होगा।
तो 1-0 से आगे चल रही भारतीय टीम की निगाहें नागपुर में भी दक्षिण अफ्रीका को नाको चने चबवाने पर रहेगी। और अब बात बैडमिंटन की। बैडमिंटन के कोर्ट पर हांगकांग ओपन में पुरुष एकल वर्ग में कल चीन के तियान हाउवेई ने अपने ही हमवतन वांग झिंगमिंग को 25-15, 21-11 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उल्लेखनीय है कि तियान ने पहले ही दौर में भारत के श्रीकांत को हराकर बाहर किया था। वहीं महिला एकल वर्ग में गैर वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा ने बड़ा उलटफेर करते हुए चौथी वरीयता हासिल चीन की ताइजू यिंग को 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनके अलावा 8वीं वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान भी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने तीसरी वरीयता हासिल कोरिया की सुंग जी ह्यून को 21-14, 21-7 से मात दी। शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मरीन की जीत का सिलसिला भी जारी है। क्वार्टर फाइनल में मरीन ने थाईलैंड की पोर्नतिप बुरान प्रासेर्त सुक को 21-12, 21-13 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में ही मलेशिया के ली चोंग वेई ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लोंग को 13-21, 21-19, 21-15 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। वैसे इस टूर्नामेंट में तमाम भारतीय खिलाड़ी पहले ही दौर में हारकर बाहर हुए, जिनमें पीवी सिंधु और के श्रीकांत के अलावा अजय जयराम, एच एस प्रणय और महिला युगल वर्ग में अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी भी शामिल है। अब विश्व रैंकिंग में भारत की साइना नेहवाल महिला एकल वर्ग में पहले स्थान पर बनी हुई हैं, लेकिन के श्रीकांत 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। और अब बात टेनिस की। टेनिस के कोर्ट पर एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कल पुरुष एकल वर्ग में 5वीं वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल ने अपने ही हमवतन डेविड फेरर को 6-7, 6-3, 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आज सेमीफाइनल में नडाल का सामना शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं पुरुष युगल वर्ग में कल क्रोएशिया के इवान डोडिंग और उनके जोड़ीदार ब्राजील के मार्सिलो मेलो ने मार्सिन मातकोवस्की और नेनाद जिमोनजिच की जोड़ी को 3-6, 7-5, 10-6 से मात दी। इससे पहले भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया को गुरुवार को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इटली के सिमोने बोलेली और फेबियो फोगनिनी ने 6-4, 1-6, 10-5 से हराया। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश माली में बंधक संकट खत्म हो गया है। शुक्रवार सुबह होटल रेडिसन ब्लू में इस्लामिस्ट बंदूकधारियों ने हमला कर 170 लोगों को बंधक बना लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर इस्लामिक स्टेट से लड़ने में सभी देशों को साथ आने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई के नए चरण की बात की है। पेरिस में जिस जगह पर एक हफ्ते पहले इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने हमला किया था, आज लोग वहां मृत लोगों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार में कल नीतीश कुमार ने 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव के 2 बेटों समेत 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। 1 घंटे बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।